हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सब बच्चे लोग सबसे ज्यादा जोर से आवाज से बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द, आप सबका श्री नंदगांव धाम में स्वागत है। नंदगांव में अभी हम पावन सरोवर में बैठे हैं। आपके सामने पावन सरोवर है, बहुत ही सुंदर स्थान है। तो नंदगांव ये कृष्ण और बलराम जी का बचपन का स्थान है। इन दोनों का जन्म तो गोकुल में हुआ था, मथुरा में गोकुल में हुआ था। कृष्ण भगवान का मथुरा में हुआ था और गोकुल में तीन साल पांच महीने रहने के बाद में ये लोग वापस नंदगांव में आए। नंद बाबा का जो घर है वो नंदगांव में पहले से ही है, लेकिन उनको बालक नहीं हुआ। 85 साल तक उनको बालक नहीं हुआ। वृषभानु महाराज को भी कन्या नहीं हुई, तो वो लोग कन्या और बालक के इच्छा से जमुना किनारे गोकुल में रहने गए और वहां पर समय के बाद उनको पहले बलराम जी का जन्म हुआ, फिर कृष्ण का जन्म हुआ, फिर रावल में राधा रानी का जन्म हुआ, फिर बहुत सारे राक्षस लोग आए। हाँ, आपको हिंदी समझता है ना बच्चे लोगों को? बहुत सारे राक्षस लोग आए और पुतना आई, शक्टासुर आया, तृणावर्त आया और बकासुर तक बहुत राक्षस आए। तो सब लोगों ने मीटिंग किया, बहुत राक्षस लोग आ रहे हैं बालक को मारने के लिए, तो ये जगह अभी सुरक्षित नहीं है, अभी हमको सुरक्षित जगह वापस लौट के जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ से मथुरा बहुत पास में है, जमुना पार किया तो गोकुल तुरंत, दूर जाना चाहिए। तो फिर दूर जाते हैं और वापस नंदगांव में आते हैं और वृषभानु महाराज राधा रानी को लेकर बरसाना में जाते हैं, फिर बस जाते हैं आप। तो ये कृष्ण भगवान के बालक लीला की जगह है, यहाँ पर उन्होंने बाल लीला किया। क्या विशेषता है इस जगह की? गौलोक धाम के अंदर भी, जहाँ भगवान रहते हैं गौलोक धाम के अंदर, वहां पर भी भगवान का बाल रूप का दर्शन नहीं है। यहाँ पर ही वो जन्म लेते हैं, बालक बन के आते हैं, रेंगते हैं, क्रॉलिंग, ब्रोकन लैंग्वेज, टूटे हुए बोल बोलते हैं, खेल खेलते हैं गौशाला में, गुल्ली डंडा खेलते हैं, गेंद खेलते हैं। ये उनकी बाल लीला की जगह है। तो हम लोग जो बोलते हैं दामोदर लीला, दामोदर लीला का मतलब क्या है? जो बालक लीला जो है, हालांकि दामोदर लीला जो है वो उधर हुई थी, गोकुल में हुई थी, बकासुर को मारने के बाद में फिर वो लोग यहां पर आए। तो इस तरह से नंदगांव जो है, ऐसा कहते हैं नंदगांव जैसा आनंद का ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे सुंदर बालक श्री कृष्ण भगवान, वो जब छोटे रूप में आएगा तो कितना सुंदर रहेगा। हाँ, अरे हमारे साउथ अफ्रीका में एक बच्चे भी बहुत सुंदर लगते हैं जब बच्चे होते हैं। हाँ, मतलब कि काले हैं वो ग्रुप दिखते हैं, लेकिन जब बालक होता है तो बहुत सुंदर लगता है। हर चीज का, हर व्यक्ति का मन जो है वो खींच लेता है बालक, अपने अपने बोलने से, चलने से, खेलने से। बालक जो है वो हर चीज का, दिल का जो भाव है वो खींच लेता है। तो ऐसे कहते हैं कि एक भक्त हैं भगवान के, वो भजन लिखते हैं अपना, उसमें लिखते हैं कि मैं किसी की पूजा नहीं करता, मैं केवल नंद बाबा की पूजा करता हूँ। क्यों? क्योंकि नंद महाराज इतने महान है कि साक्षात पर ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान जो है उनको खुश करने के लिए बालक बन के उनके आंगन में आते हैं और खेलते हैं। कितने महान होंगे वो? देखो, पर ब्रह्म जो है श्री कृष्ण भगवान जो गौलोक में निवास करते हैं, वो उनको इतना प्रेम करते हैं कि उनको आनंद देने के लिए बालक बनकर उनके घर में आते हैं। बालक बनने का मतलब क्या है? डांट भी खाते हैं कभी, हाँ कभी डंडा भी दिखाते हैं उनको, कभी गोद भी खिलाते हैं, कभी स्तन पे दूध पिलाते हैं। ये सब बहुत अद्भुत चीजें हैं। तो इस तरह से ये नंदगांव को ऐसे कहते हैं कि नंदगांव जैसा आनंद कहीं भी नहीं है, कि कृष्ण भगवान यहाँ पर इस भूमि में खेलते हैं, ये उनकी क्रीड़ा भूमि है, खेलने की जगह है। हा? तो ये जगह जो है, ये जगह, ये जो गौलोक, ये जो वृंदावन धाम है, ये कितना महान है, उसका महानता ये जगह बताता है। उसका स्टोरी ऐसा है कि एक बार नंद बाबा जो है वो कथा सुनते हैं, सब सत्संग करते हैं ना, सब सदा कथा सुनते हैं, तो कथा में सुनते हैं कि नदियों में प्रयागराज जो है ना, त्रिवेणी संगम, वहां पे जाके स्नान करना चाहिए, वहां स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो नंद बाबा तय करते हैं, चलो सब लोगों को लेके जाते हैं प्रयागराज इलाहाबाद। तो माता जो है वो सूखा प्रसाद बना रही है। हम लोग क्या करते हैं, आपने चकली बनाया कि नहीं, चकली ड्राई प्रसाद, ताकि रहेगा बहुत दिन ना सफर में, इधर काम आएगा, किधर भूख लगेगा तो बाहर खाना नहीं पड़ेगा, तो वो मटरी बना रहे हैं। मटरी, मटरी मतलब एक होता है यहाँ का स्पेशल, और ड्राई होता है। तो कृष्ण भगवान आते हैं मैया के पास, बोलते हैं मैया क्या बना रही हो, मटरी बना रही हूँ। अच्छा, मटरी को बना रही है, नहीं बाबा अभी जाएंगे ना यात्रा करने के लिए। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं बालक। बोले बाबा इलाहाबाद जाएंगे, उधर प्रयाग में स्नान करेंगे, त्रिवेणी नदी का संगम में स्नान करेंगे, गंगा जमुना और सरस्वती तीन नदी वहां मिलती है, वहां पर स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो आप लोगों को सुनकर खुशी होगी, चलो चलते हैं त्रिवेणी संगम। लेकिन कन्हैया को खुशी नहीं होती है, बोले अच्छा नहीं है, ये ब्रज छोड़ के कुछ जाना है, कहीं भी ब्रज में सब कुछ है, ब्रज परिपूर्ण धाम है, ब्रज में क्या नहीं है। तो उनको ये आइडिया अच्छा लगता नहीं, बाबा से मिलते, बाबा आप क्यों जा रहे हैं ब्रज छोड़ के, मत जाओ आप, नहीं नहीं जाना है जाना है। तो बोलते ऐसा करो, आज मत जाओ, अब कल जाओ, कल ना अक्षय तृतीया का दिन है, आप जानते हैं अक्षय तृतीया, 3:30 मुहूर्त से मुहूर्त में उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अक्षय तृतीया में सब अच्छे काम होते हैं, तो आपको यात्रा करनी है तो आप अक्षय तृतीया के दिन करो। बोला तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, ठीक है, पोस्टपोन, वन डे पोस्टपोन, थोड़ी और मटरी बना लेंगे ज़्यादा। तो अक्षय तृतीया के दिन उनको निकलना है, तो सुबह उठते हैं और स्नान करने को निकलते हैं। तो ये जो है ना, ये नंद सरोवर है एक्चुअली, हाँ नंद बाबा का सरोवर है, ये खुद का पौंड है ये। हाँ लेकिन आप लोग उठो मत, बैठ बैठ के जो करना है करो, तो कथा में डिस्टर्ब होगा ना, फिर कथा टूट जाएगी बीच में। हाँ सिट डाउन, बहुत सुंदर स्टोरी है, आपको मेरे को रिपीट करना है बाद में। हाँ बाद में एक एक पूछूंगा आपको मैं सबको, यू हैव टू रिपीट द स्टोरी आफ्टरवर्ड्स। हाँ खाली सुनने का नहीं है, रिमेम्बर एंड रिपीट। तो ये नंद सरोवर है, नंद बाबा का प्राइवेट सरोवर है, इसके अंदर यशोदा का भी घाट है, जहाँ यशोदा स्नान करती है, वहां पर उनका भी जगह है। एक और जगह है वहां पर, उसमें केवल गाय बछड़े आते हैं पानी पीने के लिए। बड़ा, कितना बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर है। तो जब ये राजा होते हैं, राजा तो उसमें अपना एक पौंड होता है, उसमें वो स्नान करते हैं प्राइवेट। तो एक जगह यहाँ पर है सामने, यशोदा घाट, उस पे यशोदा मैया स्नान करती है। जब तक कृष्ण भगवान और बलराम जी छोटे छोटे थे तो यहाँ पर स्नान कराते थे, जब वो बड़े हो गए तो कृष्ण भगवान और बलराम के लिए अलग कुंड बना दिया, कृष्ण कुंड है वहाँ पर थोड़ा सा आगे, मतलब अभी हमने हमारा कुंड अलग होना चाहिए, तो वो भी हम लोग जो गाड़ी रुकी थी ना, थोड़ा सा आगे जाता कृष्ण कुंड है वहाँ पर। तो छोटे से थे, बहुत छोटे, तो यहाँ पर मम्मी उनको स्नान कराती थी। तो नंद बाबा अपने घाट पे यहाँ पर स्नान करने को सुबह सुबह आते हैं, रोज स्नान करते हैं अपने घाट पे आके। वो दिन एक अद्भुत चीज देखते हैं, अरे एक लंबा चौड़ा आदमी, बहुत अच्छा दिखने वाला, बहुत एकदम मुकुट पहना हुआ है, अलंकार पहने हैं, राज वस्त्र पहना हुआ है, बहुत उसके हाथ में कंगन है, बड़ा जूता पहना हुआ है, जूता निकाल के खड़ा है। और चलो तो ऐसे आदमी को तो नंदगांव में कभी देखा नहीं मैं, क्योंकि तो राजा है ना, सबको जानते हैं वो, ये तो आदमी कभी देखा नहीं, बहुत ऐसे लगता है कि राजा है कोई बड़ा। तो आज आगे जाके देखते तो जो कुछ वो कर रहा है राजा, वो उससे भी अद्भुत है। वो क्या कर रहा है, वो इस जल में स्नान कर रहा है। आप क्या करेंगे, बाद में बदन पोछेंगे ना पूरा, नया कपड़ा पहनेंगे चले जाएंगे, नहीं ये आदमी स्नान कर रहा है, फिर ये मट्टी जो है ना किनारे की, उसमें वो लोटपोट हो रहा है, इज रोलिंग इन द डस्ट, और फिर नदी, फिर जाके कुंड में स्नान कर रहा है, फिर आ रहा है और फिर रज में सो रहा है, घूम रहा है और फिर जाके स्नान कर रहा है, अरे ऐसा क्यों कर रहा है? तो जाके महाराज जी पूछते हैं, नंद महाराज, हे महाराज जी आप कौन हो? तो बोलते हैं मैं प्रयागराज हूं स्वयं, क्योंकि हर जो स्थान है ना एक व्यक्ति है, भक्त है भगवान के, वो धाम के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। अच्छा, तो दंडवत प्रणाम करते। नंद महाराज बोलते दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत आपकी कृपा है कि आप हमारे नंदगांव में आए, लेकिन मुझे प्रश्न पूछना है कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो स्नान करके चले जाते हैं, आप स्नान करके फिर मट्टी में, फिर स्नान करके फिर मट्टी में, क्या है चक्कर? तो बोलते हैं कि साल भर में दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ स्नान करते हैं, उनका सारा पाप जो है ना वो छोड़ते हैं हमारे अंदर। फिर साल में एक दिन अक्षय तृतीया के दिन मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे सारे पाप जो है वो साफ कर देता हूँ। अरे क्या बात है, दोबारा बोलना। हाँ, बोलते हैं कि जो साल भर में जितने पापी लोग दुनिया भर के सब लोग आते हैं हमारे अंदर स्नान करते हैं 364 days, 365 days कौन सा है? अक्षय तृतीया। उस पवित्र दिन पे मैं यहाँ पर आता हूँ और स्नान करके वो जितने पाप इकट्ठा करके रखे हैं वो सब यहाँ पर धो डालता हूँ और शुद्ध होके दोबारा मेरी सेवा करने को जाता हूँ, जहाँ पर मेरी जगह ऑफिस मेरा है वहाँ पर। तो उनका आश्चर्य होता है, अरे क्या बात है, इस रज के अंदर इतनी शक्ति है, इस रज में लौटने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके कुंड में इतनी शक्ति है। अच्छा, तो दंडवत करते हैं, उठा के देखते हैं तो वो किनारे में खड़े बात कर रहे हैं, ये किनारे में क्या देखते हैं, बहुत सुंदर 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 स्त्रियां जो हैं, बहुत सुंदर, जैसे कोई तो देवी है स्वर्ग लोकों की, ऐसे बहुत देवियां जो है वो सब लोग यहाँ स्नान कर रही हैं। अरे इनको भी कभी देखा नहीं यहाँ पर, और वो भी ऐसा ही कर रही है, वो भी स्नान कर रही है और रज में लोटपोट हो रही है और फिर वापस स्नान कर रही है। तो महाराज जी स्विमिंग करके इधर आते हैं, बोलते देवियों प्रणाम, मेरा स्वीकार कीजिए, आप कौन हो? तो बोलते हैं गंगा, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, सिंधु, बहुत नाम लेते हैं, भीमा, सतलज, क्या क्या नाम लेते हैं। अरे आप लोग क्या क्या कर रहे हो? बोले हमारे भी अंदर दुनिया भर में जहां पर भी हम घूमते हैं सब जगह पर पापी लोग आके हमारे अंदर स्नान करते हैं और सारा पाप छोड़ देते हैं पानी के अंदर, हमारा पाप बढ़ जाता है फिर उनका सब पाप इकट्ठा करके। तो अक्षय तृतीया के दिन हम सब नदियां जो हैं वो देवी स्वरूप शरीर करके यहाँ पर आके स्नान करती हैं, रज में लौटती है, सारा पाप छोड़ के हम चले जाते हैं। तो नंद महाराज को फिर आइडिया आता कि हमको जरूरत क्या है जाने की, ये सब लोग हमारे कुंड में स्नान कर रहे हैं, हमको वहां पर जाके स्नान करें, कैंसल, मटरी घर भी खा लेते हैं, यात्रा करते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतना पवित्र स्थान है कि जितने पवित्र स्थान दुनिया में है नदी तीर्थ जो है वो सब यहाँ पर आके स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। तो नंद बाबा को भगवान क्या बताना चाहते हैं, भगवान ने लीला क्यों किया, कि नंद बाबा क्या बताना चाहते थे उनको कि ब्रजभूमि जो है परिपूर्ण है, यहाँ पर एक एक जगह जो है, यहाँ पर सभी तीर्थों ने, नदियों ने, पहाड़ों ने, जो पवित्र स्थान है सबने यहाँ आश्रय लिया है, खुद की शुद्धि के लिए वो सब यहाँ पर आते हैं। आपको और एक कहानी बताता हूँ, बहुत सुंदर कहानी है। नंद बाबा का जो बहुत देर तक बालक नहीं हुआ तो उन्होंने मन्नत मांग ली, उनका बालक होगा ना तो मैं चार धाम की यात्रा करूंगा। आप लोगों ने किया ना अभी चार धाम की यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है। उस पवित्र यात्रा में लोग मर भी जाते हैं कभी कभी, अभी तो गाड़ी हो गई है, सब ट्रेन है, सब कुछ है, हेलीकॉप्टर भी हो गया उधर, उस जमाने में वो चल के जाते थे और जाने के पहले सब लोग उनका दंडवत प्रणाम, हार तुरा सब करते थे, उनको प्रणाम करते थे क्योंकि पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि तो जंगल में रास्ते में जंगल में कोई शेर है, कोई हाथी है, कोई सांप बिच्छू है, कोई थकान है, आदमी मर सकता है, लौट के आएगा तो उसका और बड़ा उत्सव मनाते हैं कि लौट के आया चारों धाम की यात्रा करके। ऐसे पवित्र धाम में जाने की मन्नत मांगते हैं कि अगर बालक होगा तो मैं चार धाम की यात्रा करूंगा। तो बाद में बालक होता है, नंदगांव में आने रहने आते हैं, कुछ समय बाद में वो फिर प्लानिंग करते हैं चलो चार धाम की यात्रा करके आएंगे। फिर नंद बाबा को पूछते हैं कृष्ण भगवान कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो बोलते हैं कि हम लोग चार धाम की यात्रा जाएंगे। ये क्या होता है चार धाम? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, अलकनंदा, फिर महेंद्र पर्वत, और क्या क्या है उधर, बहुत सुंदर, हर की पेड़ी, हरिद्वार, बहुत जगह है, वो सब जगह हम जाके अपना भगवान को धन्यवाद करेंगे कि आपका जन्म हुआ, आपकी प्राप्ति हुई, थैंक यू वेरी मच करके आएंगे। तो फिर उनको अच्छा लगता नहीं है, वाई क्यों जा रहे हैं यहाँ छोड़ के, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आंख बंद कर लो, मैं सब बद्रीनाथ केदारनाथ हाँ सबको इधर बुला लेता हूँ, आप फिर आराम से स्नान करना, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो आंख बंद कर लेते हैं, अभी आप खोलो, आप खोलते ही अपने आप को बद्रीनाथ के बीच में पाते हैं। इधर बद्रीनाथ नर नारायण का पर्वत है ना, नर नारायण बीच में अलकनंदा बह रही है, उधर केदारनाथ, उधर गंगोत्री जमुनोत्री, उधर हर की पेड़ी, हरिद्वार, महेंद्राचल, सब कुछ, मानसरोवर, जितना भी ऊपर का स्थान है ना, ऊपर जितना भी आप जानते हैं पूरा लिस्ट है उसका बड़ा, वो सब उनकी आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। गंगा का उगम दिख रहा है, जमुना जी का उगम दिख रहा है, नंद बाबा बड़े खुश हो जाते हैं, अरे अपना बालक तो अद्भुत बालक है, आंख बंद करके एक मिनट में पहुंचा दिया उधर, मैंने पहुंचाने दिया उनको, यहाँ बुलाया। तो फिर बड़े प्रेम से वो नदी में स्नान करते हैं, गंगोत्री जमुनोत्री में स्नान करते, दर्शन करते हैं, नरनारायण ऋषि का दर्शन करते हैं। तो ये काम्य वन में है, आप काम्य वन जाएंगे तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, तो उधर आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हम नंद बद्रीनाथ में ही, ऐसा लगेगा आपको, केवल ठंडी नहीं है बस, लेकिन ऐसे पहाड़ है उधर सुंदर कि आपको लगेगा अरे क्या अद्भुत चीज है। और क्या दया है, जब वो स्थान जब ब्रज भूमि के अंदर प्रकट होते ना, तो वहां से भी अधिक कृपा वो यहाँ करते हैं। जैसे वहां पर जाएंगे तो खाली पाप को धुला देंगे ना, गंगा में स्नान करें तो ऊपर पाप धुला देंगे, लेकिन जब वही गंगा मानसी गंगा के रूप में आती है गोवर्धन के अंदर और वहां स्नान करते हैं, तो वही गंगा आपको पाप से साफ करेगी, लेकिन साथ साथ में भक्ति भी देगी, प्रेम भक्ति, केवल पाप का नाश नहीं करेगी, और उसको स्नान करने का आसान कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जाना है बद्रीनाथ समझो, तो कितना कष्ट है, कितना दूर, 2.5-3 दिन के बाद में पहुंचते हैं वहां पर, इतना ठंडी, इतना ऑक्सीजन कम है उधर, दम लगता है, लोगों को जमता नहीं सब कुछ करने, बहुत कष्ट है वहां पर जाके स्नान करने के लिए, लेकिन वही जगह पर यहाँ प्रकट होती है तो वो कोई कष्ट नहीं है। आप जाएंगे देखेंगे केदारनाथ का पहाड़ है यहाँ पर, केवल ऐसा कुछ 500 फीट रहेगा जमीन से ऊपर, आप ऊपर जाके देख सकते हैं, उधर एक शिला के अंदर नंदी है, पूरा पत्थर का नंदी बना है बहुत बड़ा, उसके नंदी के नीचे केदारनाथ का लिंग है, बहुत सुंदर, इतना सुंदर दर्शन है, कोई भी आदमी तकलीफ होगा तो भी आराम से जा सकता है। लेकिन बद्रीनाथ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घोड़ी करना पड़ेगा, डोली करना पड़ेगा, 14 घंटे का रास्ता चलना पड़ेगा, ऊपर हाँफते हैं, दम लग रहा है आपको, पता नहीं क्या सर्दी होगी, बुखार आएगा, यहाँ पर उतना कष्ट नहीं है। तो भी बोली रहे तो मानसिक अंग कथा बता देता हूँ मैं। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे नंद बाबा बैठकर कथा सुन रहे थे, गंगा जी की महिमा सुन रहे थे, तो क्या सुन रहे कथा में, वो सुन रहे हैं कि एक बार गरुड़ जो है ना, गरुड़ वो एक सांप को पकड़ता है, लिसन केयरफुली, तो गरुड़ जो है वो सांप को पकड़ता है, वो खाते हैं सांप को ना, तो सांप को पकड़ के खाने के लिए जा रहे हैं वो, लेकिन जाते जाते क्या कहते हैं, गंगा जी के ऊपर से उड़ रहे हैं, तो सांप तो ऐसा लंबा होता ना ऐसा, तो यहाँ पकड़ा है तो भी यहाँ से ऐसा लटकेगा ना उसका, तो जो गंगा जी के पास में जब उड़ते हैं तो सांप के पूंछ का जो पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो गंगा जी के पानी में टच होता है, और टच होते ही सांप जो है उसकी मुक्ति हो जाती है, और सांप का शरीर बदली होके 4 भुजा वाला विष्णु दूत का रूप तैयार होता है। तो गरुड़ जो है अरे हाथ में तो बदली हो रहा है, देखते हैं हाथ में सांप नहीं है, अभी 4 भुजा वाला विष्णु दूत पैदा हो गया है हाथ में, उसका मुक्ति हो गया। तो जैसे ही वो देखता है कि विष्णु दूत मेरे हाथ में है सांप के बदले में, उसकी मुक्ति हो गई है, तो उसको अपने पीछे रखते हैं कंधे पे, और खुद उसको लेके भगवान के वैकुंठ धाम प्रवेश करते हैं। जिसको खाना चाहते थे वो, उसका मुक्ति हो गया, तो उसी को पन्ने पर रख के मालिक के रूप में वैकुंठ पहुंचा के आते हैं केवल स्पर्श होने से। तो नंद बाबा झट से उठते वहीं से, बोलते हमको अब भी जाना है गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो फिर कृष्ण भगवान बोलते अरे ये क्यों जा रहे हैं आप, इतना दूर क्यों जा रहे हैं, नहीं नहीं हमको गंगा जी में स्नान करना है, अभी कथा सुनी ना हमने, स्पर्श होते ही मुक्ति होगी, वैकुंठ चला गया वो गरुड़ के पीछे बैठकर, गरुड़ खुद लेके गया उसको, हमको भी जाना है। तो भगवान उनको क्या करते हैं, कोई बात नहीं आप मेरे साथ चलो। तो सबको ना गिरिराज गोवर्धन के बीच में लेके आते, एकदम बीच में सेंट्रल जगह पे लेके आते, और बोलते आंख बंद कर लो, अभी अभी खोलो, फिर आंख खोलते देखते हैं साक्षात गंगा देवी जो है वो देवी के रूप में क्रोकोडाइल पे बैठकर, मगरमच्छ के ऊपर बैठकर वहां प्रकट होती है, और भगवान से कहते हैं क्या सेवा है आपकी बताइए, आज्ञा करो। तो भगवान कहते हैं यहाँ अपना जल डाल दो पूरा, मेरे बाबा स्नान करेंगे ब्रजवासियों के साथ। और गंगा जी जो है उनके मन से प्रकट होती है, सब लोग देखते हैं कि इसके मन के अंदर से गंगा जी प्रकट हो गई है और सामने आकर फिर पूछ रही है कि क्या सेवा करूं, तो उनको आदेश देते हैं, तो गंगा जी हाथ जोड़ के उनकी स्तुति कर रही है छोटे से बालक की। नंद बाबा देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, अरे गंगा जी जिसको हम प्रार्थना करते हैं वो मेरे बालक की पूजा कर रही है, उनके आज्ञा पालन कर रही है। उनके आंखों के सामने गंगा जी पूरा जल डालते हैं उसके अंदर, और उस समय सागर जैसा कुंड तैयार हो गया था वहां पर, इट्स लाइक अ ओशन, बिग ओशन। आज भी पूरे ब्रज के अंदर सबसे बड़ा सरोवर जो है ना वो मानसी गंगा है। क्यों नाम गया मानसी गंगा उसका? क्योंकि तो मन से प्रकट हुई ना वो, इसलिए मानसी गंगा नाम हो गया। तो बाद में कृष्ण भगवान बोले बाबा लो स्नान कर लो, गंगा जी आ गए आपके धाम में। तो वो जो गंगा जी है वो केवल पापों का नाश नहीं करती, जब वो गोवर्धन के बीच में आके प्रकट होती है उसमें स्नान करने से पाप तो नष्ट करती है, साथ में कृष्ण भगवान के चरणों की प्रेम भक्ति भी दे देती है। ऐसे ब्रज में अद्भुत स्थान है। अभी काम्यवन जाएंगे आप तो काम्यवन में श्रीलंका है, रामेश्वर है, सेतुबंध भी है, गया है उधर, गया जानते ना आप, गया में जाके लोग श्राद्ध करते ना अपने, कोई मर गया तो गया में जाके श्राद्ध करते हैं, कहते गया में श्राद्ध होगा तो वापस लौट के नहीं आते हो, ऐसा बोलते हैं। वो गया भी यहाँ प्रकट हो गया है, और क्या उसका ऐसा भगवान ने प्रकट किया अपनी गोपियों के आनंद के लिए। तो गोपियां एक बार गामेवन में खेल रही थी उनके साथ में, तो वो गोपियां बोलते कि अरे हमने सुना था कि तुम पिछले जन्म के अंदर राम भगवान बन के आए थे और तुमने रावण को मारा था और समुद्र के अंदर ब्रिज बनाया था, हमने सब सुना है, हमको तुम्हारा वो रूप दिखाओ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं ये सब झूठ मूठ की बात है, मैं कोई राम वाम नहीं था, ये सब ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं। तो गोपियां जिद करती है, नहीं हमने सुना है कि तुम्हारे पिछले अवतार में तुम राम भगवान थे, अगर आपको हमको आप अगर राम का रूप नहीं दिखाते हैं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो भगवान को अगर गोपियां बात नहीं करेंगे तो बहुत दुख होता है उनको, अरे गोपियां धमकी दे दिया कि हम बात नहीं करेंगे आपसे। तो फिर वो कहते हैं आग बंद करो, और आग बंद करते हैं तो अभी खोलो, और जब खोलने की जब जैसे खोलते हैं देखते हैं कि वो समुद्र के बीच में खड़ी है, एकदम अथाह समुद्र है। हाँ, और देखते हैं अपना कन्हैया का, कन्हैया कहाँ है, देखते तो राम के रूप में भविष्य बाण लेके सीते सीते पुकार रहे हैं, तो रावण मैं आ रहा हूं ऐसे बोल रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं। तो वो एकदम ड्रामा चलता है, ड्रामा आप देखते हैं ना मंदिर में जब ड्रामा होता है सब लोग ऐसे एकदम टेंशन में आके बैठ जाए, अभी क्या होगा अभी क्या होगा, एकदम ड्रामा में एकदम समरस हो जाते हैं ना, ड्रामा को देखते ड्रामा के जो चल रहा है उसमें सीन चल रहा है उसमें ही सोचने लगते हैं। तो सभी गोपियां एकदम टेंशन में आके देखते हैं अभी क्या होने वाला है। तुरंत राम भगवान लक्ष्मण के साथ में प्रकट होते हैं धनुष लेके, और सब बंदर प्रकट होते हैं वहां पर, और सभी वो समुद्र में अंदर ब्रिज बनाते हैं उनकी आंखों के सामने झट से, और वहां पहुंचते ही वहां से वो एक राक्षस प्रकट होता है रावण। तो भगवान बोलते रावण सावधान, उनका युद्ध होता है, सब गोपियों के सामने भगवान रावण को मार डालते हैं, सब लोग जय श्री राम बोलते हैं, और उधर आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर देते हैं। फिर खोलते हैं तो देखते हैं कि वो ब्रिज वैसा ही है, राम भगवान बने हुए कृष्ण कृष्ण बनकर खड़े हैं, और रावण को मार दिया गया है, और रामेश्वर जो शिवजी ने वहां पर शिवजी का स्थापना किया ना राम जी ने, वो भी राम भगवान के रूप में कृष्ण भगवान स्थापन करते हैं वहां पर। तो आज भी आप जाएंगे काम्यवन में तो वहां पर रामेश्वर का दर्शन है, वहां से ब्रिज का आरंभ होता है, थोड़ा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, और वहां पर आगे श्रीलंका है, कोई मंदिर वगैरह नहीं आवर हो लेकिन वहां पर श्रीलंका माना है, ये ब्रिज है, यहाँ रामेश्वर है, उधर गया है। उधर गया कुंड का महत्व क्या बताया मालूम है आपको, कि वहां आप जाएंगे अपने किसी का श्राद्ध करने के लिए तो केवल उनकी मुक्ति हो जाएगी, कोई भगवान का धाम का गारंटी नहीं है। लेकिन वही अगर आप इस गया में जाएंगे तो आपको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, अगर आप वहां खाली पहुंच गए ना, खाली पहुंच गए बस, और पहुंच के आपको खाली याद करना है कि मेरी कौन सी दादी गुजर गई है, कौन सी नानी गुजर गई है, कौन सा नाना नाना काका कौन गुजर गए अपने, उनकी खाली याद करने, बस उनकी याद करने से न केवल उनकी मुक्ति होती है उनको कृष्ण भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। केवल वहां पहुंचने से वो लाभ तो एक्चुअल गया में भी नहीं है, वो लाभ गंगा जी में भी नहीं है, जमुना जी में तो यही, जमुना तो यहीं की है, गंगा सरस्वती कावेरी गोदावरी के अंदर वो लाभ नहीं है जो जब वो यहाँ आती है तो उनको मिलता है। तो पावन सरोवर की ये कथा है बहुत सुंदर। यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन आज भी बड़ा उत्सव होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन हमको तो दिखाई नहीं पड़ते अपने आंखों से, लेकिन सभी नदियाँ सभी तीर्थ क्षेत्र जो हैं सभी पहाड़ जो भी जितने तीर्थ स्थान हैं सब यहाँ पर आते हैं, और स्नान करते हैं। ये प्रयागराज का एक बार भगवान ने अभिषेक किया था, तीर्थराज, सब तीर्थों का राजा बनाया उनको और उनका अभिषेक किया, सभी तीर्थ लोग आए थे वहाँ पर उनका अभिषेक में, तो बढ़िया धूमधाम से उनका अभिषेक होता है। तो प्रयागराज एक कंप्लेंट करते हैं भगवान से, वो कहते सब लोग आए लेकिन वृंदावन नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं बनाया है, ये वृंदावन मेरा घर है, ये तीर्थ में नहीं आता, ये धाम है, धाम, ये सब तुम लोग को उसका आश्रय लेना पड़ेगा, जब तुम्हारी तकलीफ होगी, तुमको पाप होगी, तुमको इस धाम का आश्रय लेना पड़ेगा। तो यही प्रयागराज जो है राधा कुंड श्याम कुंड में भी उसने आश्रय लिया हुआ है। तो ये सब भक्त है भगवान के, ये सब भक्त जो है वो नदी के रूप में, तीर्थ के रूप में, पहाड़ के रूप में, जगह के रूप में अपनी सेवा करते हैं भगवान की, और फिर अपने आप की साधना करते हैं, सेवा करते, शुद्ध होने के लिए ब्रज में आते हैं और आश्रय लेते हैं, ऐसा भगवान का धाम है। तो कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा।
गोकुल में तीन साल रहे ना?
तीन साल गोकुल में, तीन साल पांच महीना रहे, बाद में इधर आए, दस साल छह महीना तक यहाँ पर रहे, दस साल छह महीना माइनस तीन साल चार महीना आप कर लो, सात आठ साल यहाँ पर रहे, और यहाँ पर फिर उन्होंने गोवर्धन को उठाया है, सात साल की उम्र में यहाँ से रासलीला बचाया है, यहाँ पर अरिष्टासुर का वध किया, यहाँ से गोवर्धन में गए हैं। तो 10 साल ऐसे कहते हैं ना कि वन डेकेड इन वृंदावन, वन सेंचुरी इन आउट ऑफ वृंदावन, 10 साल यहाँ रहे, 100 साल बाहर रहे, 10 साल का साथ में रहने का आनंद दिया और 100 साल दूर रहने का दुख दिया उन्होंने। क्यों किया ऐसे मालूम है आपको? क्यों किया ऐसे? क्योंकि भगवान जब साथ में रहते हैं तो एक प्रकार का आनंद मिलता है, लेकिन भगवान दूर चले जाते हैं तो उससे हजारों लाखों गुना आनंद मिलता है, लेकिन दुख होता है, लेकिन दुख में उनको भाव का, भगवान का संग मिलता है। अब देखिए ना, राम भगवान भी थे अयोध्या में, शादी हो गई, बढ़िया आनंद था, राजा बनने वाले थे, अचानक जंगल चले गए, सारे अयोध्या के लोग जो है दुख के सागर में डूब गए, सारे बोलते हमको अयोध्या में रहना नहीं है, हम जंगल में रहेंगे आपके साथ में। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो उनको मिलने के बाद में जो उनका विरह है उसका आनंद जो है वो बहुत गहरा आनंद है, उसका अनुभव देने के लिए भगवान उनको छोड़ के चले जाते हैं। कृष्ण भगवान भी 10 साल यहाँ रहे फिर चले गए यहाँ से, सभी गोपियाँ नंद बाबा सब तड़पे उनके लिए, उस तड़प के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेम का अनुभव किया, प्रेम की वृद्धि हो गई उनकी, यहाँ तक कि वो प्रेम को देखकर उद्धव जो देखने को आए थे वो भी पागल हो गए, बोले ये क्या, ये कैसा प्रेम होता है, मैं तो साथ में रहता हूँ उनके, मैं साथ में बैठता हूँ, खाता हूँ, उठता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं मेरे से भाग्य किसी का नहीं है, मैं तो भगवान के साथ में बैठता हूँ, खाता हूँ, मजाक करता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, शिकार खेलता हूँ, युद्ध में बैठता हूँ, दरबार में बैठता हूँ, सलाह करता हूँ, इतना क्लोज भगवान से हूँ मैं, और क्या जीवन में प्राप्ति हो सकती है, इससे बड़ी क्या अचीवमेंट क्या है। तो भगवान कहते हैं कि अरे इसको अभी थोड़ा गर्व हो गया है, लगता है कि अभी सबसे हाईएस्ट पोजिशन पर ये मैं ही हूँ, चलो उसको अभी वृंदावन के स्कूल में भेजते हैं, द्वारका का स्कूल में उसको ग्रेजुएशन कर लिया है, वृंदावन में उसको पीएचडी करना चाहिए जाके, तो यहाँ भेजते हैं, क्या बहाना करके भेजते हैं, जाओ मेरा मैसेज लेके जाओ और गोपियों को सब समझाओ, बहुत रो रहे हैं लोग, उनको जरा अच्छी तरह सांत्वना करो, समझा बुझा के उनको जरा, आप तो बड़े विद्वान हो उद्धव, है ना, पंडित है ना, बड़े बड़े विद्वान हैं, तो आते हैं उद्धव जी यहाँ पर। अरे उद्धव जी आते हैं एकदम पागल हो जाते हैं, वो क्या सोच के आते हैं कि जो लोग बहुत दुख होते हैं ना, दुखी होते हैं ना, उनको योग सिखाना चाहिए, योग सिखाने से दुख में कंट्रोल आता है, मन एकदम संतुलन में आता है, तो मैं उनको योग सिखाऊंगा, अभी कैसे ना इतना रो रहे हैं वो लोग, कभी रोग दुख से मुक्त करने के लिए मैं उनको योग सिखाऊंगा, प्राणायाम, योग, धारणा सिखाऊंगा। तो क्या देखता है वो चमुना के जैसे सब गोपियां बैठी ऐसे, बोले क्या कर रही हो, बोले वो कृष्ण जो मन में बस गया है ना, अटक गया इसके अंदर, उसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। वो क्या सोच रहे, अरे योग में तो हम लोग जो बाहर भगवान की याद नहीं आती है उस भगवान को हृदय में सेटिंग करने का कोशिश करते हैं, करते हैं ना योग में, क्या करते हैं, उसकी याद नहीं आ रही हमको, हम तो दुनिया में पागल हो गए हैं, तो वो दुनिया के पागलपन को छोड़कर भगवान को सेटिंग करने का प्रयास करते हैं, योग भी भगवान को सेटल करने का प्रयास करते हैं, ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, उनका योग उल्टा है, ये तो मैंने सीखा नहीं है। तो वो समझते हैं कि इनके अंदर भगवान जो है, परब्रह्म जो है, इतने बस गए हैं कि उनको योग की जरूरत नहीं है, वो तो उनको निकालने को, भूलने के लिए उनको योग कर रहे हैं, बोले वो अभी चले गए यहाँ से ना, हमारा दिल तोड़ के चले गए, हमने इतना प्रेम किया उनके ऊपर, वादा किया आऊंगा दो दिन के बाद में, अभी 100 साल तक भी नहीं आ रहे, दुखी है वो, बोलते अभी कोई व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण पर प्रेम नहीं करना चाहिए।
द्वारका में
पहले मथुरा गए, फिर द्वारका गए, फिर हस्तिनापुर गए, फिर द्वारका आए, फिर हस्तिनापुर गए, सब जगह गए, लेकिन मथुरा वो लौट के नहीं आए। तो फिर वो कहते हैं कि इन पर दिल लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दिल लगाता है ना उनका दिल टूट जाता है बाद में, ऐसा बोलते। तो बोले अरे क्या प्रेम है इनका। फिर यहां पर आते हैं उद्धव जी, यहां पर आके बोलते नंदन बाबा का घर किधर है। तो ब्रजवासी लोग सब लोग रो रहे हैं, सब बैठ के, कोई जमीन पे, कोई घर पे, कोई ऐसा उदास लग रहे हैं, गाय भी उदास लग रही है, बछड़ा भी उदास लग रहा है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कुछ करने में, खाने पीने में, सोने में। हाँ, तो ये दुखी ब्रजवासी आता है, बोलता है देखो दो नदियां है ना यहाँ बह रही ना, उसके किनारे किनारे चढ़ के जाओ, पहाड़ पर जाएगी नदियां, ये पहाड़ से उतर रही है, आप उसके किनारे किनारे चढ़ के पहाड़ पे चले जाओ, नंद बाबा के घर पहुंच जाओगे। बोला ऐसे, ऐसा कैसे? बोले जाओगे तो पता चलेगा। तो वो दो नदियां बह रही है जोरदार, उसके किनारे किनारे ऊपर चढ़ रहे हैं, नदियां नीचे आ रही है ऊपर जा रहे हैं, ऊपर पहुंचे नंद भवन पहुंचते हैं जहां हम लोग जाने वाले हैं अभी। नंद भवन पहुंचे क्या हो रहा है, नंद बाबा रो रहे हैं, यशोदा मैया भी रो रही हैं, उनकी आंखों से जो अश्रु बह रहे हैं उनकी नदियां बह रही है। वो तो समझ में आया कि नदियां कहां से आ रही है, उनकी आंखों से बह रही है। जब से गए हैं तब से रोना बंद ही नहीं हुआ है, इतने अश्रु बह रहे हैं कि नदियां बह रही हैं उसकी। वो देख के हैरान हो जाते हैं, अरे ऐसा भी कोई अश्रु होते हैं, ऐसा भी कोई रोता है, हम भी रोते हैं लेकिन हमारा दो मिनट के बाद रोना खत्म हो जाता है। ये तो रो रहे हैं कब से, कितने साल से रो रहे हैं, नदियां बह रही हैं अश्रु की। फिर वो सवाल पूछते हैं कि क्या उनको हमारी याद भी आती है, क्या कोई माखन भी उनको खिलाता है क्या, वहां पर कभी हमारे बारे में पूछते हैं क्या, बाबा और माता के बारे में बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो उद्धव जी क्या बोले अभी उनको, बोले तो राजा बने हुए हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि बालक ही है अभी तक, ये जानते हैं कि राजा बन गया है, बड़ा आदमी, राजा दरबार में बैठते हैं, हाँ सलाह करते हैं, युद्ध कराते हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा काम करते हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये तो इतना सही है, अभी कोई गाय भी मिलती खेलने के लिए उनको, किया कोई माखन भी मिलता है सुबह सुबह उठने के बाद में, कोई गीत भी गाता है उनके लिए सोने के लिए उठने के लिए, ऐसा पूछ रहे हैं। कितना प्रेम, वो देखिए उद्धव और हैरान हो जाते हैं। फिर गोपियों को मिलते हैं दोबारा, तो गोपियां बोलते हैं कि हमारे दिल की बात जो है हम पब्लिक में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक जगह है थोड़ा दूर जाने के बाद में, उसका नाम उद्धव क्यारी है, एकदम जंगल में लगे जाते हैं उनको प्राइवेट बात करने के लिए, उधर आसन लगाते हैं, उसको बिठा देते हैं और फिर दिल की बात करने लगते हैं उनसे। वो सोच रहा है कि वो उद्धव जी उनको खत पढ़ाते हैं जो गोपियों को लिखा था भगवान ने, वो पढ़ते हैं तो सीधा गोपियों को गाली देने लगती है, बोले ये बहुत काला कलूटा जो है वो कोई प्रेम करने योग्य नहीं है, बहुत उल्टा सुधा बोलते हैं उनको। बोले अरे, उनको समझ में आता है कि ये उल्टा सीधा बोल रही है गुरु कुत्ते में, लेकिन प्रेम है उनका हृदय में, प्रेम से बोल रही है। जैसे आपका बालक अगर कोई गलत काम करता है तो आप गुस्सा करेंगे ना, लेकिन गुस्से के पीछे क्या है, प्रेम तो है ना। अगर नेबर का लड़का गलत काम करता है आपको गुस्सा नहीं आता है क्योंकि आपका उस पर प्रेम नहीं है, लेकिन अपना बालक जो गलती करता है तो आप दंडा देते हैं उसको, आपको उसको डांटते भी है क्योंकि वो आपका बालक है, आपका उस पर प्रेम है और वो अच्छा होना चाहिए इसलिए आप डांटते हैं उसको। तो उसके गुस्से के पीछे भी क्या है, प्रेम है, वात्सल्य है। तो वो समझ जाते हैं उद्धव जी कि ये इतना सारा गलत बोल रहे हैं कृष्ण भगवान के बारे में, अपशब्द बोल रहे हैं उनके लिए, गलत बात कर रहे हैं, लेकिन कितना प्रेम है उनका ऊपर। तो फिर वो उद्धव जी बड़े हैरान हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं अभी मैं वापस दरबार का लौट के नहीं जाऊंगा, मुझे इन गोपियों के चरणों के रज चाहिए। अभी तो वो राजा बन के आया था, सेनापति है ना कृष्ण का, वो रथ में बैठ के आया हुआ है, उसका सेनापति रथ है उसका, बड़ा बड़ा आदमी बन के आया ना वो। तो गोपियों को बोलेंगे आपके चरणों के रज दो, तो कैसे देंगे वो उनको, बोले कृष्ण भगवान के दरबार से आया बड़ा आदमी है ये, तो ये मुझे ऐसे रज नहीं देंगी, मैं अभी दोबारा जाके यहाँ का जो रिपोर्ट है वो कृष्ण को दूंगा और वहां से लौट के इधर ही आऊंगा। तो जाते हैं, लौट के जाते हैं, कृष्ण भगवान को सारा दुख भरा वर्णन करते हैं, कृष्ण भगवान बहुत रोते हैं सुनकर, क्या क्या हुआ सब बताते हैं। और सब हो गया तो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? वापस वृंदावन जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मुझे वहां पर तपस्या करनी है। क्यों तपस्या करोगे वहां पर जाके, मैं तो आपको प्राप्त हूँ ऑलरेडी, मेरे साथ रहो आराम से। नहीं, मैं वहां जाकर वो तपस्या करूंगा जिस तपस्या करने से मैं तृण का पत्ता बनूंगा, घास का पत्ता, क्योंकि घास के पत्ते पर ये गोपियां बहुत आसानी से चलती हैं, कोई संकोच नहीं है, कोई बड़े आदमी का कोई डर नहीं है उनको, कुछ नहीं। ये रज जो है यहाँ की, यहाँ का जो पत्ता है इसको आराम से उनके चरणों की रज जो है वो प्राप्त होती रहती है, कोई उनको परेशानी नहीं उसके अंदर। तो उसका पूरा उल्टा काम यहां पर होता है। सवेद में क्या लिखा है, हाँ गंगा जी की यात्रा करना चाहिए, गंगोत्री में वहां जाके स्नान करना चाहिए, यहां पर क्या होता है यहीं पर सब लोग स्नान करते हैं बिना तकलीफ के, बिना कष्ट के, घर पे ही सब कुछ उपलब्ध है। तो ब्रज जो है वो दिव्य है, विचित्र है, अद्भुत है। तो उद्धव की लीला जो है बहुत यहाँ की विशेष लीला है। यहाँ की उद्धव का मीटिंग जो है यहाँ का जो यात्रा करते हैं वृंदावन की, उद्धव को सबसे जीवन का सबसे बड़ा प्राप्ति जो है वो यहाँ पर होता है, जो साक्षात्कार है ज्ञान का वो यहाँ प्राप्ति होती है। गांव की जो गंवार लड़कियां हैं उनके साथ बैठकर बात करने से उद्धव को कृष्ण भक्ति के विषय में सबसे उच्च साक्षात्कार यहाँ पर होता है, द हाइएस्ट रियलाइजेशन उद्धव को यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ पर कोई पंडित नहीं है, कोई ऋषि मुनि नहीं है, सब लोग बाल बाल हैं, गाय का दूध निकालने वाले, चराने वाले, लेकिन सभी ऋषि मुनि से श्रेष्ठ है। वो ऋषि मुनि हजारों लाखों जन्म तक तपस्या करते हैं, तब कभी एक बार उनको फिर अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ पर वही परम ब्रह्म जो है बालक बनकर खेल रहे हैं उनके साथ में। ऐसे कहते हैं कि वो जो तपी ध्यानी योगी जो लोग हैं ना, तपस्वी लोग जो है, ज्ञानी है, कर्मकांडी है, अनंत जन्म तक कर्मकांड, तपस्या, ज्ञान, ध्यान, तप सब करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको सब कुछ छोड़ के, हाँ परिवार छोड़ के, धन छोड़ के, सब लालसा छोड़ के, अच्छा खाना छोड़ के, वस्त्र छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अकेला विलक्त विरक्त होकर जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, लेकिन उनको फिर भी भगवान के चरणों के 10 नाखून में से एक नाखून में से निकलने वाले हजारों लाखों किरणों का एक किरण भी दिखता नहीं, उनको दर्शन ही नहीं होता उनको। और वही भगवान जिनको प्राप्त करने के लिए हजारों जन्मों तक तपस्या करते हैं सब मुनि साधु, साधु लोग, ऋषि लोग, वही भगवान गोपियों के आंगन में बालक बन के नाचते हैं। बोलते माखन चाहिए, चलो मैं ताली बजाऊंगी, आप नाचो, नाच के बाद माखन मिलेगा, फिर नाचते हाँ, और फिर माखन मिलता है, बोला और माखन दो, चलो और ताली बजाएंगे, आप नाचो, और नाचते हैं बिना संकोच के नाचते हैं। जिनको प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग सब कुछ छोड़ के विरक्त होकर तपस्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर इशारे पे नाच रहे हैं उनके, क्योंकि यहाँ पर प्रेम है, वहां पर केवल साधना और तपस्या है। साधना और तपस्या से भक्ति प्राप्त होगी ऐसे गारंटी नहीं है, प्रेम होना चाहिए, प्रेम, ये प्रेम का भूमि है। यहाँ पर कोई और करेंसी चलता नहीं है, कोई भी नोट निकालेंगे आप तो चलेगा नहीं, यहाँ पर प्रेम का कुछ होगा आपके पास तो भगवान आपके लिए यहाँ उपस्थित है। अगर आप बोलेंगे मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, ये सब टोपी पहन के आऊँगा यहाँ पर तो कोई पूछेगा नहीं, यहाँ पर उसका कोई वैल्यू नहीं। आप बोलेंगे जो अमेरिका में जाएंगे, बोलेंगे मैं नंदगांव का सरपंच हूँ, बोले कौन है नंदगांव, क्या सरपंच क्या होता है ना, मैं बोलेंगे नहीं मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मेरा पूरा नंदगांव परगना मेरे अंदर है, तो कोई वैल्यू नहीं उसका। उसी तरह से यहाँ पर आएंगे बोलेंगे हम बॉम्बे, अगर कृष्ण भगवान के बारे में भक्ति है, प्रेम है, तो यहाँ पर आपको नोट किया जाएगा। अदरवाइज हम लोग बोलेंगे मैं उड़पी से आया हूँ, आप बोलेंगे मैं कल्याणपुर से आई हूँ, मैं बोलेंगे मैं इधर से आया हूँ, मैं पुड़बिद्र से आया हूँ, पुड़बिद्र से आया हूँ, मैंगलोर से आया हूँ, हमारा उधर भर है बड़ा, हमारा बहुत कोकोनट है, हमारा पिताजी का बहुत कनेक्शन है वहाँ पर, तो क्या फ़ायदा है इधर आके, हाँ कोई वैल्यू नहीं उसका। यहाँ पर सारी टोपियाँ उतार के आना चाहिए, उस बालक के चरणों में समर्पण करने के लिए। वो बालक जो खेलता है ना अपने भाई के साथ में, सब दुनिया को नचाता है ना। अरे देवता लोग आते हैं यहाँ पर, उनको एंट्री नहीं मिलता है। इंद्र भगवान चंद्र सब लोग आते हैं, दूर से प्रणाम करके वहीं चले जाते हैं। जैसे मैं अभी ऑफिस से घर में आता हूँ तो मेरी बेटी मेरे सर पर चढ़ सकती है ना, वो खेल सकती है। तुरंत कोई ऑफिसर आएगा बोलेगा साहब बहुत बिजी है अभी, अभी बाद में डिस्टर्ब मत करना। क्या बिजी है, उनकी लड़की उनके सर पे बैठकर घोड़ा घोड़ा कर रही है। जैसे ऑफिसर आता है बोलता है सर मिलना है साहब को, बोले अभी नहीं मिलना है साहब बिजी है, अभी दो घंटे बाद आओ। तो घोड़ा घोड़ा गेम खत्म हो जाएगा, फिर वो बेडरूम से अंदर आएंगे हॉल पे आएंगे ना, तभी साहब मिलेंगे। और उनको मालूम पड़ेगा नहीं किस में बिजी थे, वो कभी मालूम नहीं पड़ेगा उनको, खाली इतना मालूम पड़ेगा बिजी है। वैसे यहाँ पर भगवान अपने घर पे आए हुए, यहाँ पर अपने घर पे आके बालक बन के खेल रहे हैं। यहाँ पर वो द्वारका में राजा बन के लीला करते हैं, है ना, जगन्नाथपुर में भोजन करते हैं, श्रीरंगम में सोते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, लेकिन खेलने के लिए किधर आते हैं, वृंदावन धाम में आते हैं। और जब खेलने को आते हैं तो कोई टोपी पहन कर नहीं आते, मैं द्वारकाधीश हूँ, मैं वैकुंठाधिपति हूँ, सब कुछ छोड़ के आते हैं। चप्पल भी नहीं पहनते, नंगे पैर घूमते हैं, गाय चराते हैं, गोबर में लौटते हैं, ऐसा काम करते हैं जो हम लोग सोच भी सकते नहीं है। तो ये भगवान का दिव्य धाम है, यहाँ पर एकदम नम्र बन के आना चाहिए, सब कुछ भूल करके, मैं क्या हूँ, कितना धनी हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, क्या मेरी पोजीशन है, क्या मेरा ताकत है, सब कुछ भूल के नम्र बन के आना चाहिए। नम्र बन के आएंगे तो सब कुछ पक्का हो जाएगा, शाश्वत। जो भी जप कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, वो चिरंतन बन जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। और कोई अगर अगर्भ से आएंगे तो सब टेम्पररी हो जाएगा, जो भी आप करेंगे सब खत्म हो जाएगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपका। नम्र बन के आएंगे तो सब स्ट्रांग हो जाएगा, आपका भक्ति साधना सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो आप लोग भी बुला रहे हैं, पापा उसके आ गए शायद, है ना। अभी एक मिनट, नंद भगवान में पास जाएंगे, नंद भगवान के पास, नंद महाराज के पास, कृष्ण भगवान के पास नम्र होके जाना, कृपा की याचना करना, गिड़गिड़ाना हाथ जोड़ के कि आपके चरणों में आए हैं। यस माता जी,
कुरुक्षेत्र के बाद
इधर नहीं आए, इधर से उनको उधर बुलाया मिलने के लिए, कुरुक्षेत्र में बुलाया सब गोपियों को। हाँ हाँ, तो बाद में आए वो दंतवक्र को मार रहा उन्होंने मथुरा में, उसके बाद में आए, उसके बाद में आके ऐसा हुआ उसका, थोड़ा बोलता संक्षेप बोलता हूँ। कुरुक्षेत्र में जब वो गए तो गोपियां बहुत व्याकुल हो गए, उनको पहचान नहीं पाई, क्योंकि वो कैसा नंद महाराज के मन में था, ये छोटे से बालक है ना, वैसे इनके मन में ऐसा ही, हमारे जो यहाँ से गए थे ना वही रूप मन में है उनके, वो उसी रूप को देखना चाहते हैं। तो वो क्या होता है, राजा बन के आ रहे हैं, अरे इतने घोड़े, इतने सैनिक, इतने रथ है उनके सामने पीछे, सब गार्ड्स हैं, एकदम पूरा वस्त्र पहन के, पूरा मुकुट पहन के, एकदम 1,000, 16,000, 108 रानियां उनके रथ में खड़ी हैं। तो उनको वो पहचान नहीं पाते, उनको दे कांट रिलेट टू हिम, अरे ये तो हमारा काना नहीं है, वो तो अलग है, वो तो पति पत्नी राजा बनकर आया हुआ है। तो उनको वो मिल नहीं पाते, वहाँ पर बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो भगवान बोलते हैं कि मैं आऊँगा, बड़े दुखी होकर लौट जाते वो असहाय होकर। तो बाद में फिर वो महाभारत होने के बाद में दंतवक्र को मारने के बहाने मथुरा आते हैं, और उनको मार के तुरंत ब्रज में प्रवेश करते हैं। तभी सारे ब्रजवासी जो हैं एकदम मरने जैसे हो जाते हैं, एकदम मतलब 100 साल के ऊपर हो चुका है, अभी अभी जिंदगी और बचेगी नहीं इनके विरह में। तो उसी राइट टाइम पे पहुंचते हैं और सबको लेके गौलोक वृंदावन जाते हैं, अपने धाम में उनको छोड़ के दोबारा लौट के आते हैं। फिर द्वारका यादव लोगों का मृत्यु होता है, फिर भगवान भी चले जाते हैं। ऐसा ब्रजभूमि है, ये अनोखा लीला है, इसके अंदर समझ नहीं सकते हम लोग। तो आइए चलो सब लोग नंदगांव चलेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, जो सारे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है यहाँ पर बालक बन के खेल रहा है। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच।